आज हम अनेक भक्तों से अच्छे अच्छे ऑफरिंग सुने हैं, खास करके वृंदावन प्रभु से जो हम सुने हैं, कुछ लोगों को थोड़ा शॉक लगा होगा, क्योंकि वृंदावन प्रभु महाराज के निकट, बहुत निकट होकर बहुत सालों से जुड़े हैं। महाराज की तबीयत के बारे में कुछ थोड़ा बता रहे थे। मैं एक बार जब गोवर्धन इको विलेज में महाराज को मिला, महाराज बोले कि मैं दो चार बार उनको पूछ दिया था दीक्षा के संबंध में, महाराज इतने सालों से अपनी दीक्षा क्यों नहीं दिया, तो हर बार कुछ ना कुछ दूसरा चीज बताकर उसको दबा देते थे, महाराज बोलते नहीं थे जवाब। लेकिन एक बार जब मैंने पूछा तब उन्होंने एक विषय बोला, उन्होंने कि अगर काउंसलर्स जो होते हैं वो लोग प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं, जैसे वो बता रहे थे मुंबई में पुणे में आसानी से समस्या काउंसलर लेवल तक सुलझ जाता है, लेकिन अनेक बाकी स्थानों में भक्तों का संख्या धीरे धीरे एस्पायरिंग डिसेबल्स का संख्या बढ़ जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई देख रेख करने वाले कोई नहीं होते हैं। तो उस मंदिर के जो अधिकारी लोग महाराज को फोन करते हैं सीधा, तो महाराज बोले कि प्रभुपाद के समय में इस तरह लोकल समस्याएं प्रभुपाद जी को नहीं आते थे, और प्रभुपाद सिर्फ 12 साल के लिए थे इस्कॉन में, उसके बाद प्रभुपाद का वैकुंठ बस हो गया प्रभुपाद जी का। लेकिन महाराज बोले कि प्रभुपाद के डिसेबल्स का स्थिति अलग है, क्योंकि प्रभुपाद के डिसेबल्स लगभग 50 साल सेवा कर चुके हैं इस्कॉन में, जो लोग 1968 में आए अभी उनका शरीर भी बहुत क्षीण होता जा रहा है, क्योंकि जो माँ बाप के पास दो चार बच्चे हैं उनको संभालना भी कितना कठिन है आप लोग जानते हो, उनको बड़ा करके, अगर एक मान लीजिए गुरु के 10,000 शिष्य हो तो अलग अलग लोग जो समस्या उनके ऊपर डालते हैं, एक व्यक्ति के पास कितना अपेक्षा होता है शिष्यों से, और तकलीफ देने वाले शिष्यों से और समस्या ज़्यादा होता। तो महाराज बता रहे थे प्रभुपाद के टाइम में अलग अलग मंदिर उनके लेवल पर ही समस्याओं को हैंडल करते थे, लेकिन आजकल के इस ज़माने में महाराज बोले कि सब मंदिर के अध्यक्ष लोग जानते हैं कि लोकल समस्या को गुरु के लेके पास लेके जाने से शिष्य लोग गुरु को बहुत डरते हैं, क्योंकि यश प्रसाद वो जानते हैं सब लोग, इसलिए गुरु को ना कुछ नहीं करना चाहिए, ये बात सबको मालूम है। इसलिए महाराज बोले कि अनेक प्रोजेक्ट से मुझे फ़ोन कॉल आता है, महाराज आप क्या ऐसे शिष्य कर रहे हैं, फलाना फलाना शिष्य, आप इसको हैंडल कीजिए। तो महाराज बोले तब मेरा टेंशन बढ़ जाता है, उसे मेरा व्याधि बढ़ता है, ऐसे बता रहे थे महाराज। तो एक वैष्णव आचार्य गुरु के दो पर्सनालिटी हम देख सकते हैं, एक है हम उनसे उनके शरीर को उनके आकार को देखकर हम अपेक्षा करते हैं कि इनका शरीर ऐसे सच्चिदानंद विग्रह जैसे ही काम करे, तो ये सत्य बात है कि उनके इंद्रिय और मन कृष्ण में पूर्ण रूपेण समर्पित होने के कारण वो उनके इंद्रिय और मन को किसी भी माया की चीज़ों में वो लगाते नहीं, इसलिए उनके शरीर दिव्य माना गया है। उसके साथ साथ हमें ये बात भी जान लेना चाहिए कि क्योंकि वो भी इस भौतिक दुनिया में हैं, उनको भी शरीर ऐसे एक पंचम भूतों का शरीर मिला है, उससे हमें बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, तो यह बात जानना आवश्यक है। इसलिए हम लोग कभी कभी लीलाएं सुनते हैं, एक बार गोविंद प्रभु बता रहे थे, एक भक्त ने बोला कि महाराज जी फोगला आश्रम में ही ठहरते हैं और अम्बेसडर कार में ही जाते हैं, दूसरा अच्छे कार यूज़ नहीं करते, तो ऐसे ऑफरिंग दिया था एक व्यास पूजा में, तो महाराज ने गोविंद प्रभु को बोला अभी मुझे फोगला आश्रम में ठहरना पड़ेगा मुझे और अम्बेसडर कार में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि एक शिष्य ने बोल दिया मैं दूसरे कार्य यूज़ नहीं करता अभी। तो वो बताया गोविंद प्रभु कि इस तरह हम महाराज के ऊपर कभी कभी हम अच्छे लीलाएं सुनते हैं, हमको बहुत आनंद आता है, इसलिए आपको ज़्यादा मैं दुखित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लीला ऐसे बताऊँगा थोड़ा आपको लाइट लगेगा आपको। तो महाराज की नम्रता से हम बहुत प्रभावित हैं। एक बार गौरवाणी प्रभु थे महाराज के कार्यक्रम में, क्या बोलते हैं बुक लॉन्च कार्यक्रम में, मैं भी था उसमें। तो अगले दिन सुबह महाराज ने श्रीमद् भागवतम क्लास दी, क्लास होने के बाद गौरवाणी प्रभु आए, वो बोले कि महाराज जी कल हजार से भी ज्यादा बड़े बड़े लीडर लोग आए थे और आप स्टेज में अकेले बैठकर उनको प्रवचन दिया आपने, आप ही कल के स्टार थे, ऐसे बोले वो प्रभु जी। तो महाराज बोले यस यस आई एम अ स्टार बट यू आर मिलियन मून्स, ऐसे बोला महाराज उनको, क्योंकि उनके गौरवाणी प्रभु के कीर्तन का ग्रुप का नाम क्या है, 10 मिलियन मून्स। महाराज बोले मैं स्टार हूँ लेकिन आप 10 मिलियन चंद्रमा हो, क्योंकि वही तुम्हारा नाम है, तुम्हारे ग्रुप का नाम है। तो महाराज बोले ये जो चंद्रमा है बड़ा रोशनी देता है, स्टार क्या रोशनी देता है। तो गौरवाणी प्रभु कुछ बोल नहीं पाए, चुप हो गए वो। तो इस तरह महाराज जी को मालूम है किस समय क्या बोलने से वो उनके नम्रता में कोई उनको पराजित नहीं कर सकता है। हमने देखा कभी स्पर्धा होता था, इज़ोल में जयदत्त स्वामी बैठे रहते थे और महाराज बैठे रहते हैं, तो परम पूज्य रानाथ महाराज ने उनकी बहुत गुणगान किया। जयदत्त स्वामी बोले नो 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 आई एम सिंपली अ फूल, ऐसे बोला। महाराज बोले यस यू आर अ फूल, फूल मीन्स फ्लावर, ऐसे बोले। तो इस तरह महाराज जी के अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर बोलते हैं उसको। जैसे एक बार एक वक्ता एक स्मार्टफोन लेके आकर महाराज को दिखाया, महाराज जी हमको पता चल गया कि आप हरिद्वार में गंगा के बीच में एक पत्थर के ऊपर बैठकर आपने 64 माला की 10 दिन। महाराज ने पूछा उसको कैसे मालूम, वो स्मार्टफोन में दिखाया फोटो महाराज को। अरे उसका भी फोटो ले लिया किसी ने। तब महाराज बोले कि मैं तो थोड़ा एकांत में जाकर नाम जपना चाहता हूँ फिर भी लोग मुझे रॉक स्टार बना देते हैं। रॉक स्टार का मतलब राख के ऊपर बैठकर जप करने वाला स्टार, ऐसे बोल रहे थे महाराज। तो इस तरह हास्यपद तरीके से महाराज समझाते थे। एक वृद्ध व्यक्ति आया था 70-80 का, बहुत बड़ा दाढ़ी मूंछ लगे, वो महाराज को आकर बोला कि महाराज जी आपकी प्रभाव देखकर हमको लग रहा है कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं। महाराज बोले नहीं नहीं मैं सिद्ध पुरुष नहीं, मैं सिटी पुरुष हूँ, ऐसे बोले। इस तरह महाराज एक शब्दों से खेलते हैं, अनेक इस तरह की उनकी लीला आप लोगों ने सुना होगा। मैं कलकत्ता में जब था तब देखा मैंने एक सारे भारत के बड़ा चेस चैंपियन आया था उस प्रेरणा कार्यक्रम में। एंड में महाराज को आकर मिला कि महाराज जी कृष्ण तो हमारे हैं, भारत के हैं, हम लोग तो आसानी से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कैसा हुआ आपके जर्नी होम में, मैं पढ़कर समझा मैंने कि आप 19 साल में आकर इतने 40-50 साल अपने भारत में रहकर इस तरह कृष्ण की भक्ति में आप जुड़ गए, ये बड़ा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, ऐसे बोला। तो महाराज बोले मुझे कृष्ण के बारे में मालूम नहीं था लेकिन भारत में आकर जब कृष्ण के बारे में पता चला मुझे वृंदावन जाकर, तब यूअर कृष्णा चेकमेटेड मी, ऐसे बोला महाराज जी, आपके कृष्ण मुझे चेकमेट कर दिया। वो तुरंत समझ गया क्योंकि उसने अनेक बार चेकमेट किया होगा अनेक लोगों को, चेस चैंपियन था ऐसे। तो महाराज जी की इस तरह के बर्ताव बहुत मधुर बर्ताव, प्रेमय बर्ताव, वो इज इमोशनल जीनियस, इज फिल्ड विथ सेंस ऑफ ह्यूमर, इज वेरी हम्बल एंड ही ऑलवेज स्ट्राइक्स कॉमनैलिटी with people, he never sees the differences and he is utterly simple. हाल ही में मैंने देखा कि पिछले कुछ सालों में महाराज तीन गुणों के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, gratitude, humility and simplicity. तो एक बार एक ड्राइवर महाराज को छोड़ा कहीं, तो हम भी पीछे पड़े थे, तो महाराज उतरने के बाद वो ड्राइवर को थैंक यू बोला उन्होंने। तो ड्राइवर ने मुझे बोला कि मेरे जीवन में अभी तक इस तरह बड़े लोग किसी ने भी थैंक यू बोला नहीं है, पहली बार हमको थैंक यू मिल रहा है। तो महाराज किसी को भी धन्यवाद देते थे जिनसे भी कुछ भी थोड़ी मात्रा में भी कुछ लाभ उठाया हो हमने, ऐसे। इस तरह हम अनेक गुणों के बारे में सुनते हैं महाराज के बारे में, वो बहुत प्रेरणादायक होता है हमको, लेकिन हमें ये बात भी जानना चाहिए जो वृंदावन प्रभु ने आज बताया। तो वाड़ा में महाराज जी ने ये जो बोला ये बात, ये काउंसलर लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, उनके अंडर में जिनको रखा है। तो जब तक जैसे एक नाव में मान लीजिए 40-50 लोगों को बिठा कर आप चला रहे हो, आप नाव का कैप्टन हो, अगर कैप्टन सही हो तो नाव भी अच्छा चलेगा, अगर नाव का कुछ हो जाएगा गलत मार्ग में जाएगा तो सब लोग साथ में डूब जाएंगे। तो महाराज की बड़ा अपेक्षा है। तो महाराज के शुरुआत के दिनों से, मैं तो 91 में जुड़ा था, महाराज 86 में आए थे मुंबई में, लेकिन 91 से भी हमने यही चीज़ देखा कि जब महाराज वृंदावन आ पहुँचे थे, उधर राधा रानी और व्रजवासियों की जो दिव्य गुण था, जो उनके उनके अंदर जो भावनाएं थी, उसका असर बहुत बड़ा महाराज के ऊपर। शेयरिंग कल्चर, कंसल्टिंग कल्चर, हम्बल कल्चर, कल्चर ऑफ सर्विस, कल्चर ऑफ सेल्फलेसनेस, कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट, कल्चर ऑफ फैमिली, तो ये चीज़ों को लेकर महाराज ने काउंसलर सिस्टम बनाया। उस ये सब को लेकर, साथ में लेकर, इसको संक्षिप्त रूप में बताना हो तो महाराज की सारे चीज़ों को मैं 3 लाइन में डाल सकता हूँ उसको। पहला, नए लोगों को अगर आप मिलते हो तो अट्रैक्ट एंड इंस्पायर, नए लोगों को आकर्षित कीजिए आपके दिव्य गुणों के द्वारा, और उनको इंस्पायर कीजिए कृष्ण भावनामृत में। उसका मतलब है, पहले लोग आपसे आकर्षित होते हैं कृष्ण भावनामृत के लिए नहीं, आपके अच्छे स्वभाव से, आपके कैरिंग नेचर से, आपके बर्ताव से लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन उनको उसके द्वारा उनको कृष्ण भावनामृत में प्रेरणा देना, माला देकर नाम जपाना, तो अट्रैक्ट एंड इंस्पायर। दूसरा क्या है, ट्रेन एंड एंगेज, सर ट्रेन एंड एजुकेट थ्रू लव एंड केयर। आप उनको प्रशिक्षण दीजिए, शिक्षा भी दीजिए। प्रशिक्षण का मतलब है कैसे घर में भगवान के शिव गुरुओं की पूजा आराधना करना, कैसे मंगल आरती करना, कैसे नाम जपना, प्रैक्टिकल कैसे धोती कुर्ता पहनना, कैसे साड़ी पहनना, ये सब कैसे तिलक पहनना, वैष्णव सदाचार, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एटीट्यूड, उसके लिए ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, ट्रेन। एंड एजुकेट का मतलब है, जैसे हम प्रभुपद की किताबों में उनको शिक्षा देना, गीता भागवत में इत्यादि में, तो ट्रेन एंड एजुकेट थ्रू लव एंड केयर। जिधर लव एंड केयर होता है उधर ट्रेनिंग एंड एजुकेट करना मुश्किल नहीं है, लेकिन लव एंड केयर के साथ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाराज जी बोल रहे थे एक बार कि हमारे काउंसलर सिस्टम में जो प्रशिक्षण मिलता है वो लोगों को ज्ञान भी देता है, इट एनलाइटन्स देम, एंड द लव एंड केयर एनलाइवन्स देम। एनलाइटनिंग मीन्स हेड, एनलाइवन मीन्स हार्ट। सो उसमें ट्रेनिंग एजुकेशन भी है, वो लव एंड केयर के द्वारा एक फैमिली कल्चर भी है उसमें। सो ट्रेन एंड एजुकेट थ्रू लव एंड केयर। वो होने के बाद आगे क्या है, एंगेज एंड एम्पावर, उनको सेवा में जोड़ना। क्यों, जिस व्यक्ति को कुछ सेवा मिल गया वो जुड़े रहेगा। जैसे आप जगन्नाथपुरी में जाकर देखिए, 2000 परिवार है जो जगन्नाथ के लिए सेवा दे रहे हैं, और सैकड़ों सालों से एक व्यक्ति है, उसका बेटा, उसका बेटा, उसके बेटा ऐसे सेवा देते आए हैं। एक व्यक्ति का काम है सिर्फ ऊपर जाकर झंडे बदलना, ऐसे एक व्यक्ति का है कुकिंग करना, ऐसे जगन्नाथ के सेवा में कितने लोग जुड़े हैं, 2000 परिवार जुड़े हैं, और वो लोग वंश के बाद वंश के बाद वंश के बाद। सत्यराज खान को चैत्र महाप्रभु ने बोला कि जगन्नाथ को रथ में रखते समय आपको क्या देना है, वो जो तकिया होता है उनको बिठाने के लिए। अभी आजकल भी सत्यराज खान के परिवार वाले लोग तकिया दे रहे हैं आजकल भी। तो इसलिए हरेक हमारे कांग्रेगेशन के परिवार को मंदिर से जोड़कर कुछ सेवा की प्राप्ति होना चाहिए, प्रचार की सेवा हो, कुकिंग की सेवा हो, हार की सेवा हो, इस तरह कुछ सेवा होना चाहिए। तो बहुत आनंद की बात है कि हमारे कम्युनिटी में 50 से भी ज़्यादा बच्चे भक्ति वेदांत विद्याश्रम अटेंड कर रहे हैं। सुबह शाम 2-2 घंटे का कार्यक्रम हो रहा है उनका, साथ साथ बच्चों के लिए वृंदरानी माता जी खास कुछ कार्यक्रम कर रही है, छोटी बच्चियों के लिए, बड़े लड़कियों के लिए उनका भी कार्यक्रम है। जैसे ऋषिकेश प्रभु के माता अच्छे तरीके से उनके लिए 25-30 लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सब काउंसलर सिस्टम को छोड़कर उसके बाहर भी ऐसे अनेक प्रशिक्षण के कार्यक्रम है पुणे में, और सेवा का भी एक बोर्ड है, काउंसलर सॉरी सर्विस बोर्ड है, कांग्रीगेशन सर्विस बोर्ड ऐसे। तो हमारे मंदिर में अनेक चीज चल रहा है, शायद हमको मालूम ही नहीं होगा क्या क्या चल रहा है इतने बड़े कम्युनिटी में, लेकिन अंततः हर एक मेंबर कम्युनिटी मेंबर को एंगेज एंड एम्पावर। एंगेज का मतलब उनको सेवा में जोड़ना, एम्पावर का मतलब उनको लीडर बना देना किसी चीज के लिए। पहले आप एंगेज करते हैं तो सेवा में जुड़कर थोड़ा सेवा देते रहेंगे, अगर उनमें से कोई लीडर बनने के लिए योग्य हो उसको लीडर बनाते हो तो वो और 10-20 लोगों को सेवा देगा वो। देयरफॉर एंगेज एंड एम्पावर। तो काउंसलिंग का महाराज ने एक परिभाषा दी, उन्होंने बोला कि टू टू मेक अ डिवोटी फील केयर्ड फॉर लव्ड वांटेड शेल्टर्ड प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी टिल द लास्ट ब्रेथ. उनके अंतिम सांस तक एक भक्त को ऐसे फीलिंग देना कि मैं सुरक्षित हूँ, ये एक परिवार है और मेरी भी इधर जरूरत है, लोग मुझे प्रेम करते हैं, मैं इधर रहने से ये अच्छा कम्युनिटी है और मेरे जीवन धन्य हो गया है. इस तरह उनको सुख की भावना आना चाहिए. प्लस दूसरा उन्होंने बोला एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ देयर लाइफ हैविंग अ मीनिंगफुल सर्विस एंगेजमेंट. किसी भी उनके जीवन के क्रॉस सेक्शन में उनको एक सेवा होनी चाहिए. ये महाराज का सोच ऐसा है. तो मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताया महाराज जी की काउंसलिंग सिस्टम के संबंध में, क्योंकि ये काउंसलिंग सिस्टम बहुत बड़ा सपोर्ट है महाराज के लिए. क्योंकि एक बार कुछ काउंसलर लोग मुंबई में महाराज को शिकायत की, महाराज जी हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है क्योंकि हमारे काउंसलर्स 100 से भी ज़्यादा हो गए हैं, सब पीछे पड़ रहे हैं हमारे पीछे. महाराज ने बोला मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ इसलिए तो मैं आपको हैंड ओवर किया. अगर तुमको स्ट्रेस हो रहा है तो तुम्हारे काउंसलर ग्रुप में क्या करो, और कुछ लोगों को चुनो तुम्हारे नेक्स्ट, उनको सिर्फ एंगेज मत करो लेकिन एम्पावर करो, असिस्टेंट काउंसलर बनाओ, काउंसलर बनाओ, तुम्हारे स्ट्रेस को उनके ऊपर डालो. अगर उनको स्ट्रेस हो तो क्या करना है वो ही करना है उनको. ऐसे बोले महाराज, मैं था उस मीटिंग में जब महाराज बोले ऐसे. तो इस तरह हम करने से आप देखेंगे वृंदावन की यात्रा में 7,400 डिवोटीज आए थे, कितना एकदम शांति से एकदम टक 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 करके दिन ब दिन कितना अच्छा गया. थोड़ा कहीं भी कुछ आवाज नहीं निकला, ऐसा इधर गड़बड़ हो गया, गड़बड़ कुछ गड़बड़ नहीं था. ये कैसे होता है, अगर सब लोग अपने अपने सेवा में रहते हैं, हाथ में काम मुँह में नाम हृदय में राम, ऐसे सब लोग रहेंगे तो समस्या नहीं होगा. ये महाराज की ही इज़ द फादर ऑफ काउंसलिंग, इसलिए काउंसलर लोग जो हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है. अगर वो उनके काम को सही ढंग से करेंगे तो महाराज को शांत, उनका दिमाग उनका सर ठंडा हो सकता है, शांत रह सकते हैं महाराज जी, महाराज खुश हो जाएंगे और हम उनको तृप्त कर पाएंगे. तो आज बहुत अच्छे अच्छे ऑफरिंग्स आए अनेक भक्तों से, बहुत आनंद आया आज सुनकर भक्तों से. और अनेक भक्तों से हम सुन नहीं पाए लेकिन वो भक्त लोग लिख सकते हैं महाराज के लिए ऑफरिंग, अगर वो सब कांग्रेगेशन को पहुंचा सकते हैं उस ऑफरिंग्स को, क्योंकि वो भी बहुत पहुंचे हुए भक्त हैं, अनेक गंभीर भक्त हैं, अनेक भक्त लोग उनके ऑफरिंग्स भी हम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं. परम पूज्य राणा स्वामी महाराज की, शैल प्रभुपाद की.
हरे कृष्णा. थैंक यू राधेश्याम प्रभु.